मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज के इस 19 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं राज्यसभा की उपयोगिता पर आप सबसे बात करूंगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सच पूछे तो आज जो दूसरी खबरें भी हैं वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उनमें चूंकि सबसे महत्वपूर्ण राज्यसभा विषय मुझे मालूम पड़ रहा है तो फिलहाल मैं मुख्य विषय के तहत उसी पर बात करूंगा। लेकिन संकेत के तौर पर दूसरे विषयों के बारे में भी थोड़ी सी बातें आपसे बताना चाहूंगा। आपने कल टीवी चैनल पर देखा होगा कि हमारे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदे भारत के स्वास्थ्य की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है हेल्थ सिस्टम फॉर ए न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स पोटेंशियल पाथवे टू रिफॉर्म्स। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के दो भाग हैं, पहला वह जो वर्तमान में है जो स्थितियां हैं और दूसरा ये कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में कि मेन एग्जामिनेशन में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए तो हर साल हेल्थ पर आपको एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसमें आपको हेल्थ के बारे में डेफिनेटली रेफरेंस के रूप में कुछ चीजें मिलेंगी। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, रेफरेंस के रूप में। हम ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि सिविल सर्विस में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हेल्थ पर कुछ पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न अगर आता है, तो संदर्भ के तौर पर एक अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको चाहिए कि इसका कोई न कोई अंश रिपोर्ट का आप अपने उत्तर में डाल दें। और सच पूछे तो यही आपके उत्तर के का जो स्टैंडर्ड होगा उसको बढ़ा देगा। इनफैक्ट सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। तो विस्तार के साथ तो मैं इस रिपोर्ट पर बात करने की स्थिति में नहीं हूं, आप सब अपने अपने लेवल पर इसके पॉइंट्स नोट कर लेंगे। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, जो आपको नोट कर लेना चाहिए, वो है दोस्तों कि जो हमारा देश है अपने टोटल जीडीपी का कितने प्रतिशत हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है। देखिए इससे पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन यहां जो रिपोर्ट है, देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि हम अपने जीडीपी का मात्र 0.9 से लेकर 1.1% तक खर्च कर रहे हैं। सोच के देखिए हम अपने जीडीपी का, और वो भी हेल्थ सेक्टर में, और वो भी भारत जैसे गरीब देश में, अशिक्षित देश में, जहां हेल्थ सबसे बड़ी चुनौती है। तो उष्णकटिबंध में हेल्थ सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आती है सामने, कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो उष्णकटिबंधीय देशों में ज्यादा होती है। फिर हमारे यहां गरीब लोग हैं जिनके पास सोचे कि अपना पेट भरने तक के लिए पैसा न हो, उनको हेल्थ पर खर्च करना है, और अगर उनका पोषण सही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वो ज्यादा बीमार पड़ेंगे। और ऐसे देश में हम खर्च कर रहे हैं 1%, आप मोटे तौर पर कह लीजिए जीडीपी का। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, हमें बहुत लंबे समय तक काम आएगा। जबकि आप देखिए कि चीन से हम हमेशा अपनी तुलना करते रहते हैं, चीन अपने जीडीपी का 3.2% खर्च करता है, हमसे 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, जबकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय कह लीजिए, हमसे कई गुना बेहतर है। चलिए इसको छोड़िए, जर्मनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जर्मनी तो विकसित राष्ट्र है और बहुत उन्नत राष्ट्र है, वह देश अपनी जीडीपी का 9.4% खर्च कर रहा है, 9.4%, और हम खर्च कर रहे हैं, अगर आप ऊपर वाले को ले लीजिए तो 1.1%। दोस्तों इसमें और भी बहुत सी बातें बताई गई हैं और 6 खासकर बिंदु बताए गए हैं कि हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए क्या क्या करने चाहिए, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उनका उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ये चीजें आपको मिल जाएंगी, बकायदे आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी, अखबारों में भी मिल जाएंगी, तो आप उन्हें नोट कर लीजिएगा, उसमें समझने और समझाने जैसी कोई खास बात नहीं है। जो दूसरे इंपॉर्टेंट, मैं आज आपको एक प्रेस क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो दैनिक भास्कर का आज है, उसमें उन्होंने ये दिया है कि हम जो कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी का दौर है तो इसका आधार क्या है, इसके आधार क्या हो सकते हैं। हालांकि सरकार अभी तक स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर रही है कि आर्थिक मंदी का दौर है, इस एडिटोरियल में उन्होंने कुछ, आप यूं कह लीजिए, मानक दिए, कुछ सिम्टम्स दिए, कुछ लक्षण दिए हैं। आपको चाहिए कि आप उन लक्षणों को अच्छे से समझ लें। जैसे एक लक्षण उन्होंने ये दिया कि अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और यहाँ तक कि रोजाना उपभोग की जो सामग्री है जैसे तेल, साबुन वगैरह, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये सिम्टम माना जाता है कि यानी कि अब हमारे जो गांव के लोग हैं उनकी क्रय शक्ति घट गई है। तो ये मंदी के लक्षण हैं। अभी तक हम मंदी के गिरफ्त में आए नहीं हैं, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि हम आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा लक्षण बताया है कि भारत, तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाला देश है, सबसे ज्यादा सोना खरीदता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी सोना खरीदा जाता है उसका आधा हिस्सा केवल गांव के लोग खरीदते हैं और वहां भी सोने की खरीदी में बहुत कमी आई है। विद्युत उत्पादन बहुत ज्यादा गिर गया है, यहां तक कि हमारी जो विद्युत इकाइयां हैं करीब 133 विद्युत इकाइयां वो बंद हो गई हैं। अगर विद्युत की मांग में कमी हो रही है इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन घट रहा है। अब जो हमारे उद्योग हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रिक बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मांग घट करके लगभग आप कह लीजिए कि आधे के करीब हो गई है विद्युत की। तो ये हमारे दिखा रहा है कि कैसे हमारा औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, और सबसे ज्यादा जो घटे है वो महाराष्ट्र और गुजरात में जो हमारे सबसे बड़े औद्योगिक राज्य हैं। एक फिर इसमें और भी लक्षण दिया है कि देखने में आ रहा है कि मनरेगा में काम करने वाले युवकों की संख्या बढ़ गई है, नहीं तो युवक मनरेगा में काम नहीं करना चाह रहे थे। इससे कैसे मंदी का पता लग रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि वे युवक जो शहरों में चले गए थे काम करने के लिए अब वो गांव की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें अब शहरों में काम नहीं मिल रहा है। तो अब गांव में लौट करके क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो मनरेगा में काम मांग रहे हैं। तो इस तरह से इसमें इन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत मंदी की दिशा में बढ़ रहा है। मैं ये आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आपको एक एडिटोरियल कमेंट्स दे रहा हूँ। कल आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि अभी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो प्रो चाइना है और इसकी वजह से भारत के सामने एक नई चुनौती आएगी। उसी को आधार बना करके ये एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है, इकोनॉमिक टाइम्स का है, आप इसे देख लेंगे। समय चूंकि नहीं है तो मैं इसकी चर्चा अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप इसे देखें, बाद में हो सका तो हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है राज्यसभा की उपयोगिता। इस विषय को मैंने क्यों चुना है? आपने कल देखा होगा कि डीडी न्यूज पर राज्यसभा की 250वीं बैठक शुरू हुई है, 250वें सत्र कहना चाहिए, बैठक नहीं, 250वां अधिवेशन। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन होता है और डीडी चैनल पर बहुत विस्तार के साथ उसका इतिहास भी बताया गया, कुछ बहुत ही प्यारे आंकड़े भी दिए गए और इस पर फिर एक डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज उसमें किया गया था। डिस्कशन नहीं, सच पूछे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा उपयोगी है ना। उसमें आपको चीजें अलग अलग तरीके से और ठोस तरीके से दिख जाती है, ऐसा नहीं कि वहां आरोप प्रत्यारोप हो रहा हो जैसे कि दूसरे चैनल्स में जनरली होता है। दोस्तों, उसमें हमारे अब जो चेयरमैन है राज्यसभा के यानी कि उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने 10 बिंदु भी प्रोवाइड किए हैं और उनके बिंदु के आधार हैं राज्यसभा में सुधार, कि राज्यसभा में किस तरीके से सुधार किए जाए। तो उन्होंने 10 बिंदु प्रोवाइड किए, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से सुधार महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है कि इनफैक्ट सही मायने में राज्यसभा होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी उपयोगिता मुझे ज्यादा चैलेंजिंग लगती है, इस पर शायद प्रश्न पूछे जाएं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं जो अपने ऑनलाइन क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनसे उनको एक सजेशन देना चाहूंगा। काफी बड़ी संख्या धीरे धीरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की होती जा रही है, तो अब मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से उन्हें भी कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहना चाहिए। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के जितने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें देखिए एक लेक्चर राज्यसभा के ऊपर है। मैं आप सबसे विशेष रूप से अभी कहूंगा कि आज या कल में आप उस लेक्चर को जरूर सुन लें। ये मैंने अब ये उसको भूल जाइए कि आपने शुरू के लेक्चर सुने हैं कि नहीं सुने हैं, वो आप सीरियल में बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन इस टाइम पर आप राज्यसभा के लेक्चर्स को जरूर सुने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, तो ठीक है एनसीईआरटी की किताब आपको बता दी जाती है, जहां तक पॉलिटिकल साइंस की बात है या कॉन्स्टिट्यूशन राज्य व्यवस्था की तो लक्ष्मीकांत जी की किताब बता दी जाती है, नो डाउट वो किताब अच्छी है और एनसीईआरटी भी अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अपने आप में कंप्लीट हैं? नो डाउट बेस बनाने के लिए अच्छी किताब है, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि अपने आप में कंप्लीट है। और इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप ऑनलाइन क्लास वाले लेक्चर सुनेंगे। लक्ष्मीकांत की किताब में राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं और ये तो जानने ही हैं आपको, वो तो आपका फाउंडेशन है। लेकिन इसके आगे फिर जाकर के उस फाउंडेशन के ऊपर जो आपको इमारत खड़ी करनी है और सिविल सर्विस आपकी इस इमारत को ही देखती है कि कितनी बुलंद है, वो आप कैसे बनाएंगे? उसको आप बनाएंगे लेक्चर्स से कि इसको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इससे जुड़े जो मुद्दे उठते हैं उनको सुलझाया जा रहा है, उन मुद्दों पर मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि अच्छा अच्छा ये राज्यसभा है। आपको ऑनलाइन क्लास के लेक्चर में यही जानने को मिलेगा, तो प्लीज आप ये सब ऐसा करें। तो दोस्तों देखिए, जब हम राज्यसभा की उपयोगिता की बात करते हैं तो हमें दो तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोकसभा है ये तो बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि जड़ों से जुड़ी हुई सभा है, जमीनी स्थिति के लोग हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो तो दूर दृष्टि वालों की सभा है, यानी कि ऐसे लोग जो वास्तव में बौद्धिक क्षमता रखते हैं, और इसीलिए राज्यसभा बनाई भी गई है। जब आप इसके पर्पस पर जाएंगे तो है ना, जो लोकसभा है वो तो पूरी तरह से राजनीतिक सभा है आप यूं कह लीजिए, लेकिन जो राज्यसभा है बेसिकली वो बौद्धिक वर्ग की सभा है, और बौद्धिक वर्ग आप जानते हैं कि वो चुनाव जीत कर नहीं आना चाहेगा, तो आप कैसे उनका उनकी क्षमता का उपयोग करेंगे देश के हित में। अब जैसे आप देखिए कि मनमोहन सिंह जी 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहे, वो राज्यसभा के मेंबर रहे, सबसे लंबा 6 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। अब वो राज्यसभा के मेंबर से तो चुन करके और संसद में पहुंचना पसंद करेंगे, लेकिन उनके जैसा व्यक्तित्व लोकसभा में भाषण देना और दूर, मतलब वो उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, शायद वो नहीं आना चाहते संसद में, लेकिन देश को उनकी प्रतिभा का लाभ मिला। ऐसे बहुत से हमारे लीडर्स हैं जो इनफैक्ट चुनाव में सीधे कूद कर नहीं आना चाहते, लेकिन राज्यसभा के जरिए हम उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या सही में राज्यसभा हमें इस तरह का लाभ दे रहा है? क्या सही में अपने वो बौद्धिक नेतृत्व को देश को प्रदान कर रहा है, प्रूफ कर पा रहा है? इसे आपको देखना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये माना जाने लगा है कि बेसिकली जो राज्यसभा भी है वो पूरी तरह से एक तरह की पॉलिटिकल सभा बन गई है, क्योंकि एमएलए के जरिए उनका चुनाव होता है, वो राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में एक ही दल की सरकार होती है तो राज्यसभा कुछ नहीं, बड़े आराम से लोकसभा में पेश किए गए बिल को पारित कर देता है। और कल के आंकड़ों में उन्होंने दिखाया है, कल्पना करके देखिए कि राज्यसभा ने टोटल 3817 बिल पास किए, मतलब आप चलिए मोटे तौर पर मान लेते हैं 4000 बिल। उसमें से आप देखिए कि राज्यसभा ने केवल 120 में संशोधन सुझाए हैं, 120, मतलब 4000 में आप 120 में संशोधन सुझा रहे हैं, तो क्या आप सोच नहीं पा रहे हैं? क्या लोकसभा जो बिल प्रस्तुत कर रही है वो बिल्कुल ही परफेक्ट कर रही है? और अगर ऐसा ही है तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। और फिर केवल 5 बिल उसमें ऐसे रहे 4000 में, मोटे तौर पर 3800 में कह लीजिए, कि जिसको राज्यसभा ने पारित नहीं किया है, 5 बिल, और बाकी लोकसभा में जो थे वो सबके सब पारित हो गए। तो ठीक है, यहां कम से कम 5 को आपने रोका, लेकिन आप बताइए कि अपने 67 ईयर्स की जर्नी में और लगभग 3800 बिलों पर विचार करने के बाद आप सिर्फ 5 को रोक पाए। और कल डीडी चैनल पर ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया कि जो हमारा संविधान का 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें कि एक तरह से लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की गई थी वो इमरजेंसी के समय में, तो राज्यसभा ने उस बिल को बड़े आराम से पारित कर दिया, जबकि वो लोकतंत्र का रक्षक बन करके उस बिल को रोक सकता था। वो क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि लोकसभा में भी उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले जो 5 साल गुजरे हैं वर्तमान सरकार के, तो राज्यसभा में हमेशा बिल रुक जाया करता था, उसको लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती थी और नतीजा यह होता था कि किसी भी बिल को पारित कराने के लिए ना को चने चबाने पड़ते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्यसभा भी एक तरीके से शायद अपने उस महत्व को प्रतिपादित नहीं कर पा रही है जो महत्व हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय परिकल्पना की होगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि बहुत ही स्पेशल ओकेजन है तो डेफिनेटली इस पर आपको लेख भी पढ़ने को मिलेंगे और आगे चलकर हो सकता है एडिटोरियल कमेंट्स भी आए, तो जब ऐसा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा कि इस विषय पर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: आकांक्षा पांडे, समीक्षा सोनी, अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, सुभाष सोनी और मीनाक्षी कुंडू। आप सबका बहुत बहुत आभार। अभिषेक, मुझे आपका चेहरा बिल्कुल ध्यान आ रहा है, और इसी तरह से समीक्षा, तुम्हें भी मैं जहां तक है कि सही तरीके से तुम्हारे चेहरे को याद कर पा रहा हूं। आप दोनों हमारी क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। बहुत बहुत आभार कि आपने लिखा कि इस 15 दिन की क्लासेस से आप सबको काफ़ी फायदा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।